एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और एकत्र ज्ञान गोष्ठी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। और हमारा इरादा वही है, दुनिया भर के जरूरी आइडियाज, किताबें, इनको आप तक पहुंचाना एक आसान, दिलचस्प बातचीत के अंदाज में।
हाँ बिल्कुल। और आज तो हमारे हाथ लगी है एक ऐसी किताब जो भविष्य की सिर्फ आहट नहीं, ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पर कोई जोर से दस्तक दे रहा हो। मुस्तफा सुलेमान की द कमिंग वेव, एआई, बायोलॉजी एंड कंटेनमेंट।
ये किताब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिंथेटिक बायोलॉजी की उस आने वाली, कह सकते हैं, सुनामी के बारे में जो शायद हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल के रख देगी।
सही कहा। और ये किताब मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी में रुचि रखने वालों के लिए नहीं है। लेखक साफ कह रहे हैं कि ये बदलाव, एआई और बायोटेक का जो संगम है, अगले 10 सालों में ही हमारे जीने का तरीका, काम करने का तरीका, यहाँ तक कि शायद सोचने का तरीका भी बदल सकता है।
10 साल, ये तो बहुत जल्दी है।
हाँ, और इसीलिए ये आज इतनी जरूरी है, क्योंकि सवाल अब ये नहीं कि बदलाव आएगा या नहीं, वो तो तय है। सवाल ये है कि क्या हम इसे संभाल पाएंगे, क्या हम इसके फायदों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, या ये सब हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो ये सिर्फ कोई तकनीकी चर्चा नहीं रह जाती है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो पूरी मानवता के भविष्य से जुड़ा सवाल लगता है।
और इस चेतावनी को और वजनदार बनाता है खुद लेखक का परिचय, मुस्तफा सुलेमान। ये कोई बाहर बैठकर कमेंट्री करने वाले एक्सपर्ट नहीं है।
हाँ, ये अंदर के आदमी है।
बिल्कुल, वो इस खेल के खिलाड़ी रहे हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि खेल बनाने वालों में से एक। वे दुनिया की सबसे जानी मानी एआई कंपनियों में से एक, डीप माइंड। हाँ, डीप माइंड उसके को फाउंडर थे, वही कंपनी जिसे बाद में गूगल ने खरीद लिया।
हाँ, और डीप माइंड में उनका काम सिर्फ मतलब कोडिंग तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स को लीड किया जिन्होंने दुनिया को सच में चौंका दिया, जैसे वो अल्फा गो, याद है?
हाँ हाँ, जिसने गो चैंपियन को हराया था।
बिल्कुल। या फिर अल्फा फोल्ड, जिसने वो प्रोटीन फोल्डिंग वाली पहेली सुलझा दी जो दशकों से अटकी हुई थी। उससे दवाएं बनाने में कितनी मदद मिली,
कमाल था वो तो।
हाँ, और उसके बाद वो गूगल में एआई प्रोडक्ट्स और पॉलिसी के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, फिर अपनी कंपनी शुरू की इन्फ्लेक्शन एआई, और आजकल तो माइक्रोसॉफ्ट एआई के सीईओ हैं। तो मतलब ये वो शख्स हैं जिन्होंने एआई को बिल्कुल अंदर से बनते बढ़ते और कभी कभी तो अप्रत्याशित क्षमताएं हासिल करते हुए देखा है।
और यही बात उन्हें खास बनाती है, मुझे लगता है। उन्हें सिर्फ टेक्नोलॉजी की गहरी समझ ही नहीं है, उनका बैकग्राउंड फिलॉसफी और सोशल एक्टिविज्म का भी रहा है, तो वो शुरू से ही इन तकनीकों के नैतिक और सामाजिक असर के बारे में सोचते रहे हैं। ऐसा कम ही होता है कि जो चीज बना रहा हो वही उसके खतरों के बारे में भी इतनी गहराई से, इतनी ईमानदारी से लिखें। तो उनकी किताब एक तरह से इनसाइडर की चेतावनी है बाहर की दुनिया के लिए, और ये बात इसे सिर्फ एक और टेक भविष्यवाणी किताब से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है।
तो ठीक है, ये किताब आखिर कहती क्या है? क्या ये सिर्फ डराती है या कोई रास्ता भी दिखाती है? ये असल में दो धारी तलवार जैसी है। एक तरफ तो ये एक जोरदार चेतावनी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी तरफ ये एक गाइड जैसी भी है, रास्ता सुझाने की कोशिश करती है। ये हमें बताती है कि एआई और सिंथेटिक बायोलॉजी से जो बदलाव आ रहे हैं उनका स्केल कितना बड़ा है, उनकी रफ्तार कितनी तेज है, मतलब बहुत ही तेज, और उनकी प्रकृति कैसी है, ऐसी जिसे हमने पहले कभी देखा ही नहीं। सुलेमान कहते हैं कि हम अक्सर गड़बड़ कर देते हैं, या तो हम इन तकनीकों को लेकर जरूरत से ज्यादा आशावादी हो जाते हैं, सोचते हैं अरे सब बढ़िया हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं, या फिर इतने डर जाते हैं कि सोचते हैं बस इन्हें रोक दो, बैन कर दो।
हाँ, और किताब का असली मकसद शायद इन्हीं दोनों एक्सट्रीम्स के बीच एक रास्ता खोजना है। लेखक इसे कहते हैं संकीर्ण रास्ता, नैरो पाथ।
नैरो पाथ,
हाँ, एक ऐसा रास्ता जो ना तो टेक्नोलॉजी की तरक्की को पूरी तरह रोक दे, क्योंकि वो शायद मुमकिन भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं, और न ही उसे बिना किसी लगाम के, बिना सोचे समझे दौड़ने दे जिससे तबाही मच जाए। किताब पहले तो बहुत ही सरल भाषा में समझाती है कि भाई ये तकनीकें हैं क्या, जैसे आजकल हम सब सुन रहे हैं LLMs, ChatGPT वगैरह, तो ये क्या कर सकते हैं, या वो क्रिस्पर जीन एडिटिंग क्या है, कैसे वो जीवन के कोड को बदलने की ताकत देती है।
बिल्कुल बेसिक्स है।
हाँ, ताकि सबको समझ आए। और फिर आता है किताब का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट, जिसे लेखक कहते हैं नियंत्रण की समस्या, कंटेनमेंट प्रॉब्लम।
कंटेनमेंट प्रॉब्लम मतलब काबू में रखना।
हाँ, मतलब इन जबरदस्त शक्तिशाली तकनीकों को फैलने से और खासकर इनके गलत इस्तेमाल को रोकना इतना मुश्किल क्यों है? इतिहास देखो ना, प्रिंटिंग प्रेस आया, उसे कौन रोक पाया? परमाणु बम बना, कोशिशें हुई कंट्रोल करने की, पर पूरी तरह कामयाब कहाँ हुई?
सही बात है।
सुलेमान का तर्क है कि एआई और बायोटेक को कंट्रोल करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये सस्ते हो सकते हैं, आसानी से सबको मिल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये स्वायत्त हो सकते हैं, ऑटोनमस, मतलब खुद ब खुद काम कर सकते हैं, शायद खुद को बेहतर भी बना सकते हैं बिना हमारी मदद के।
ये तो डराने वाली बात है।
है तो, किताब ये भी साफ करती है कि इन्हें रोकना क्यों नामुमकिन सा है। आर्थिक कंपटीशन है, देशों के बीच होड़ लगी है, कोई पीछे नहीं रहना चाहता, सब चाहते हैं कि हम सबसे आगे हों एआई में, बायोटेक में। लेकिन अच्छी बात यह है कि किताब सिर्फ प्रॉब्लम गिनाकर नहीं छोड़ देती, ये नियंत्रण के लिए एक डिटेल्ड प्लान भी देती है। इसमें टेक्निकल उपाय भी हैं, जैसे एआई सिस्टम का रेगुलर ऑडिट हो, सेफ्टी पर फोकस हो, और पॉलिटिकल समाधान भी है, जैसे देशों के बीच संधियां हों, मिलकर नियम बने, तो ये सिर्फ खतरे की घंटी नहीं बजा रही, बल्कि उस खतरे से निपटने का एक नक्शा बनाने की भी कोशिश कर रही है।
अच्छा, तो ये हुई मोटी मोटी बात। अब जरा और गहराई में चलते हैं, कुछ मुख्य विचारों को पकड़ते हैं। पहला बड़ा आइडिया आपने बताया, लहर की प्रकृति, नेचर ऑफ द वेव। सुलेमान कहते हैं कि ये ओमनी यूज टेक्नोलॉजी है। ओमनी यूज मतलब?
ओमनी यूज मतलब जिनका इस्तेमाल हर जगह हर काम में हो सकता है। ओमनी मतलब सब कुछ। तो ये ऐसी तकनीकें नहीं है जिनका कोई खास काम हो, जैसे मान लीजिए कोई मशीन सिर्फ कपड़े धोती है, नहीं। ये एआई और सिंथेटिक बायोलॉजी, दवा बनाने से लेकर मनोरंजन, शिक्षा, खेती, जासूसी, युद्ध, हर चीज में इस्तेमाल हो सकती हैं या होंगी। पानी की तरह हैं, जो हर बर्तन में ढल जाता है, हर दरार में घुस जाता है।
समझ गया, तो मतलब इनका असर बहुत ही व्यापक होगा हर सेक्टर पे।
बिल्कुल, और इसी ओमनी यूज नेचर की वजह से ही वो नियंत्रण की समस्या, कंटेनमेंट प्रॉब्लम, इतनी मुश्किल हो जाती है, जिसकी बात हमने की थी। जब कोई चीज इतनी फायदेमंद हो, इतनी वर्सेटाइल हो, तो उसे कौन रोकना चाहेगा भला?
कोई नहीं।
हर कंपनी, हर देश उसे अपनाना चाहेगा, और यहीं पर वो आर्थिक और जियोपॉलिटिकल दबाव काम करने लगते हैं। किसी को पीछे नहीं रहना, तो सुरक्षा, सावधानी, नैतिकता, ये सब बातें अक्सर पीछे छूट जाती हैं। ये एक ऐसी रेस है जिसमें शायद सब भागना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि रास्ता खतरनाक हो सकता है।
और इस लहर को और ज्यादा ताकतवर और शायद ज्यादा बेकाबू बनाते हैं इसके वो चार खास गुण जिन पर लेखक ने ध्यान दिलाया है। पहला, ये सामान्य उद्देश्य, मतलब इन्हें बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक ही एआई मॉडल शायद डॉक्टर की भी मदद कर सकता है और हैकर की भी।
हाँ, दूसरा, ये स्वायत्त, ऑटोनोमस हो सकते हैं, यानी ये बिना इंसान के लगातार दखल के अपने फैसले ले सकती हैं और काम कर सकती हैं। सोचिए एक सेल्फ ड्राइविंग कार या एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम।
तीसरा, इनमें खुद को बेहतर बनाने, सेल्फ इम्प्रूविंग की क्षमता हो सकती है। एआई सिस्टम खुद सीख कर और बेहतर बन सकते हैं, शायद हमसे भी तेज।
और चौथा गुण, जो शायद सबसे ज्यादा चिंता पैदा करता है, वो है इनका लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजिंग।
डेमोक्रेटाइजिंग मतलब?
मतलब ये कि ये शक्तिशाली तकनीकें सिर्फ बड़ी सरकारों या अमीर कंपनियों के हाथ में नहीं रह रही।
अच्छा,
ये धीरे धीरे सस्ती हो रही हैं, आसानी से उपलब्ध हो रही हैं, छोटे समूह या तक कि अकेले लोग भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे कामों के लिए भी और जाहिर है बुरे कामों के लिए भी।
जैसे? जैसे देखिए, एआई के ओपन सोर्स मॉडल्स आजकल आसानी से मिल जाते हैं, कोई भी डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकता है। या क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग तकनीक, पहले बहुत महंगी और मुश्किल थी, अब लैब्स में काफ़ी सस्ती और आसान होती जा रही है। तो ये ताकत का फैलना एक तरह से अच्छा भी है, इनोवेशन बढ़ता है, पर ये खतरनाक भी है क्योंकि ये गलत हाथों में पड़ सकती है।
हाँ, ये बात तो है, और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत अहम पहलू है इन दोनों का संगम, कन्वर्जेंस। एआई और सिंथेटिक बायोलॉजी अलग अलग नहीं चल रहे हैं, ये एक दूसरे को ताकत दे रहे हैं, एक दूसरे को तेज कर रहे हैं।
कैसे?
जैसे एआई जीव विज्ञान की रिसर्च को हजारों गुना तेज कर सकता है। वो अल्फा फोल्ड वाला उदाहरण हमने देखा, वो बिना एआई के मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ जीव विज्ञान से प्रेरणा लेकर, जैसे हमारा दिमाग कैसे काम करता है, उससे सीखकर शायद हम और बेहतर कंप्यूटर और बेहतर एआई बना पाए।
अच्छा, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं।
बिल्कुल, और ये दोनों मिलकर जो तरक्की ला रहे हैं, वो सीधी रेखा में नहीं बढ़ रही, लीनियर नहीं है, वो घातांकीय रफ्तार से बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल, मतलब हर अगला कदम पिछले से कहीं ज्यादा बढ़ा है, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस रफ्तार से। तो बदलाव इतनी तेजी से आ रहा है कि हमें संभलने का, सोचने का मौका भी कम मिल रहा है।
और इस तेज रफ्तार के परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस भी उतने ही बड़े और गंभीर हो सकते हैं ना।
बिल्कुल, आर्थिक स्तर पर सोचिए, बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हो सकती हैं, या फिर दौलत कुछ ही लोगों या कंपनियों के हाथ में सिमट कर रह सकती है। सामाजिक स्तर पर डीप फेक, फेक न्यूज, इनसे हमारे लोकतंत्र और आपसी भरोसे को कितना खतरा है, ये हम देख ही रहे हैं। लेकिन लेखक सबसे ज्यादा जोर देते हैं विनाशकारी जोखिमों पर, मतलब ऐसे खतरे जो पूरी सभ्यता के लिए खतरा बन सकते हैं।
जैसे कि?
जैसे क्या होगा अगर AI इतने ताकतवर हो जाएं कि वो हमारे नियंत्रण से ही बाहर हो जाएं, अपने लक्ष्य खुद तय करने लगें जो हमारे हित में न हो, या फिर सिंथेटिक बायोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई जानबूझकर, या मान लीजिए गलती से ही कोई ऐसी महामारी बना दे जो कोविड से भी कहीं ज्यादा घातक हो। सुनने में ये सब साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना?
हाँ, लगता तो है।
पर लेखक जो इन चीजों को अंदर से जानते हैं, उनका मानना है कि ये वास्तविक खतरे हैं, हमें इन्हें गंभीरता से लेना होगा।
और ये तकनीकें सिर्फ व्यक्तियों या समाज के लिए ही नहीं, बल्कि देशों के लिए, राष्ट्र राज्यों के लिए भी एक चुनौती है। उनके शक्ति संतुलन को हिला सकती है।
कैसे?
सोचिए, किसी देश के पास ऐसी AI हो जो हर नागरिक पर नजर रख सके जिसे वो चाहे, या ऐसे साइबर हथियार हों जो दूसरे देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, कम्युनिकेशन सब ठप कर दें, या फिर छोटे आतंकी गुटों या नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में ऐसी बायोटेक्नोलॉजी लग जाए जिससे वो बड़े पैमाने पर नुकसान कर सकें।
बाप रे,
हमारी सरकारें, हमारे कानून, हमारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते, ये सब उस पुरानी दुनिया के लिए बने थे जहां बदलाव धीरे धीरे आता था। इस नई तेज रफ्तार दुनिया के लिए ये नाकाफी हैं। इसी को लेखक शासन का अंतर यानी गवर्नेंस गैप कहते हैं। गैप मतलब खाई। तकनीक तो रॉकेट की स्पीड से भाग रही है, और हमारे नियम कानून, हमारी संस्थाएं, वो बैलगाड़ी की चाल से चल रही हैं। ये गैप बढ़ता जा रहा है।
तो फिर करें क्या? अगर रोकना मुमकिन नहीं और खुला छोड़ना खतरनाक है, तो रास्ता क्या है? क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए?
नहीं, सुलेमान कहते हैं नहीं, यही वो संकीर्ण पथ, द नैरो पाथ का आइडिया सामने लाते हैं। वो नैरो पाथ,
हाँ,
ये रास्ता है इनोवेशन, यानी नई खोजों को जारी रखना, क्योंकि उसके फायदे भी बहुत हैं, और साथ ही मजबूत सुरक्षा और नियंत्रण के उपाय अपनाने के बीच एक नाजुक संतुलन साधने का, बैलेंस बनाने का।
तो ना तो हमें तकनीक विरोधी बनना है, लुडाइट नहीं बनना कि हर नई मशीन तोड़ दो, और ना ही आंखें बंद करके बिना सोचे समझे हर नई तकनीक को गले लगाना है कि अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है।
हाँ, दोनों अतिवाद से बचना है। हमें बहुत सावधानी से, बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाने होंगे, और इसके लिए लेखक 10 ठोस कदमों का सुझाव भी देते हैं।
अच्छा, क्या है वो कुछ कदम?
जैसे कि AI सिस्टम्स का सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए, बनाने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन के कुछ खास हिस्से होते हैं, चोक पॉइंट्स, जैसे एडवांस चिप्स बनाना, उनको रेगुलेट करना जरूरी है ताकि ये तकनीकें हर किसी के हाथ न लग जाएं। खतरनाक रिसर्च, जैसे कि वायरस को और घातक बनाने वाली रिसर्च, उस पर कड़ी निगरानी रखनी होगी, और सबसे जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, देशों को मिलकर काम करना होगा।
ये सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है, क्या देश आपस में सहयोग करेंगे इस पर?
मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल है, लेकिन लेखक का कहना है कि शायद यही एकमात्र रास्ता है अगर हमें इन तकनीकों के फायदों को हासिल करना है और उनके विनाशकारी नतीजों से बचना है।
तो अगर हम इस पूरी बातचीत को और किताब के निचोड़ को कुछ मुख्य संदेशों में समेटना चाहें, तो मेरे लिए कुछ बातें खास तौर पर उभर कर आती हैं। पहला, तकनीकी प्रसार की अनिवार्यता, मतलब पावरफुल टेक्नोलॉजी फैलेगी ही, आप उसे रोक नहीं सकते। इतिहास यही बताता है, प्रिंटिंग प्रेस हो, रेडियो हो, इंटरनेट हो,
हाँ।
तो हमारा लक्ष्य उन्हें रोकना नहीं होना चाहिए, बल्कि सही दिशा देना होना चाहिए। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम भारत में देखते हैं, UPI आया या सस्ते स्मार्टफोन आए, कितनी तेजी से हर गांव, हर गली तक पहुंच गए। आप उसे रोक नहीं सकते थे, बस रेगुलेट करने की कोशिश कर सकते थे। तो ये मानना कि ये फैलेगा, ये पहला कदम है।
बिल्कुल। दूसरी अहम बात जो मुझे लगती है वो है संगम से त्वरण, एक्सेलरेशन फ्रॉम कन्वर्जेंस। AI और बायोटेक का मिलन ये तरक्की की रफ्तार को कई गुना बढ़ा रहा है। ये 1+1=2 वाला मामला नहीं है, ये 1+1=10 या शायद 100 जैसा है।
हाँ,
इसका मतलब है कि हमारे पास सोचने, समझने, रिएक्ट करने का वक्त बहुत कम है। चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये देखते ही हैं, हर कुछ महीनों में लगता है कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आ गया। ये उसी का एक बहुत बड़ा और गहरा रूप है, तो वक्त तेजी से निकल रहा है।
तीसरा संदेश जो बहुत चिंताजनक है, शासन का अंतर, गवर्नेंस गैप। हमारे मौजूदा कानून, हमारी संस्थाएं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय नियम, ये इस तेज रफ्तार बदलाव के लिए बने ही नहीं हैं। वो पुरानी सदी की चुनौतियों के लिए डिजाइन किए गए थे। आप भारत में ही देख लीजिए, ऑनलाइन गेमिंग हो या डेटा प्राइवेसी हो या अब AI आ रहा है, इन पर नियम बनाने में कितना वक्त लगता है, और जब तक नियम बनते हैं तब तक टेक्नोलॉजी और 4 कदम आगे निकल चुकी होती है। ये गैप, ये खाई बहुत खतरनाक साबित हो सकती है।
सही कहा। चौथी बात जो थोड़ी विरोधाभासी भी है, लोकतांत्रिकरण का विरोधाभास। ये टेक्नोलॉजीज ताकत को आम लोगों तक पहुंचा रही हैं, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो रहा है, जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है।
हाँ, लगता तो है,
लेकिन यही विकेंद्रीकर ताकत अगर गलत इरादों वाले लोगों के हाथ पड़ जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान भी कर सकती है। जरा सोचिए, आजकल कोई भी इंसान झूठी खबर या नफरत फैलाने वाला वीडियो कितनी आसानी से व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैला सकता है, या डीप फेक बनाने वाले ऐप्स का इस्तेमाल करके किसी की भी इज्जत उछाल सकता है। ये उसी ताकत के दो पहलू हैं, अच्छा भी, बुरा भी।
ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और पांचवा और शायद सबसे संजीदा संदेश जो मुझे लगा, प्रजाति स्तर के दांव, स्पीशीज लेवल स्टेक्स। मतलब ये सिर्फ अगले इलेक्शन या अगली तिमागी के मुनाफे का सवाल नहीं है। लेखक का मानना है कि हम आज जो फैसले ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो पूरी मानव सभ्यता का भविष्य तय कर सकते हैं। ये फैसले तय करेंगे कि इंसानियत का अगला चैप्टर कैसा होगा। क्या हम और बेहतर बनेंगे और आगे बढ़ेंगे, या हम अपनी ही बनाई चीज़ों से खुद को ख़त्म कर लेंगे। ये हमें याद दिलाता है कि हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म फायदों को देखने के बजाय कितनी गहरी और कितनी लंबी सोच रखने की ज़रूरत है, खासकर जब दांव पर इतना कुछ लगा हो।
बिल्कुल। और किताब पढ़ते हुए कई ऐसी पंक्तियां या विचार आते हैं जो दिमाग में अटक से जाते हैं। कुछ ऐसे ही मुख्य विचारों को अगर हम साझा करें जो किताब के सार से निकले हैं। पहला तो यही, AI और सिंथेटिक बायोलॉजी ओमनी यूज हैं। ये हमारी दुनिया के लगभग हर हिस्से को प्रभावित करेंगे। ये हमें याद दिलाता है कि ये बदलाव सिर्फ कुछ टेक कंपनियों या कुछ लैब तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर हर किसी पर हर जगह पड़ेगा, कोई इससे अछूता नहीं रहने वाला।
दूसरा विचार जो मुझे बहुत पावरफुल लगा, सवाल ये नहीं कि क्या हम इन्हें रोक सकते हैं, इतिहास बताता है कि नहीं, बल्कि ये कि क्या हम इनके विकास को मानवता के हित में मोड़ सकते हैं। ये निराशावाद को झटक कर जिम्मेदारी लेने की बात है, भागने की बजाय स्टीयरिंग व्हील संभालने की जरूरत है। ये एक्शन लेने का आह्वान है कि चलो कुछ करें।
तीसरा, जो थोड़ा डराता भी है और सोचने पर मजबूर करता है, हम ऐसी बुद्धि बना रहे हैं जो शायद जल्द ही हर क्षेत्र में हमसे आगे निकल जाए, पर हमने सोचना भी शुरू नहीं किया है कि इसका मानवीय स्वतंत्रता, उद्देश्य और हमारे वजूद के लिए क्या मतलब है। ये सिर्फ तकनीक का सवाल नहीं, ये हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का सवाल है। क्या होगा जब हम इस प्लैनेट पर सबसे बुद्धिमान प्रजाति नहीं रहेंगे, क्या मायने रह जाएंगे हमारे?
गहरा सवाल है ये।
चौथा जो रास्ता सुझाता है, वो नैरो पाथ वाला। संकीर्ण पथ पर चलने के लिए हमें न तो तकनीक विरोधी होना है, न ही आंख बंद करके तकनीक आशावादी, बल्कि इस अभूतपूर्व जटिलता में सावधानी से रास्ता बनाना है। ये संतुलन और समझदारी की अपील है। एक्सट्रीम्स में जाने से बचना है और बीच का मुश्किल रास्ता चुनना होगा। बहुत प्रैक्टिकल सलाह है ये। हाँ हाँ, पांचवा, जो स्थिति की गंभीरता और अर्जेंसी बताता है। ये तकनीकें या तो मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि होंगी या उसका अंतिम आविष्कार। चुनाव अभी भी हमारा है, ये पंक्ति एक तरह से अल्टीमेटम जैसी लगती है मुझे। ये बताती है कि दांव कितने ऊंचे हैं और हमारे पास शायद ज्यादा वक्त नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी पर जोर देती है, फैसला हमारा है और हमें अभी लेना होगा, चुप बैठने का ऑप्शन नहीं है।
ये सब सुनने में बहुत बड़ा लगता है, शायद थोड़ा डरावना भी। तो सवाल उठता है कि हम एक आम इंसान के तौर पर क्या कर सकते हैं, इन बड़े बड़े आइडियाज का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या हमारी सोच पर क्या असर पड़ना चाहिए। मेरे ख्याल में व्यक्तिगत स्तर पर सबसे पहली जरूरत है अपनी तकनीकी साक्षरता बढ़ाने की। मतलब कम से कम बेसिक समझ तो होनी ही चाहिए कि ये AI क्या है, ये बायोटेक क्या बला है, ताकि हम सुनी सुनाई बातों या WhatsApp फॉरवर्ड्स पर आंख बंद करके यकीन ना करें, बल्कि खुद थोड़ा सोच समझ सकें।
हाँ बिल्कुल, इन्फॉर्म्ड रहना बहुत जरूरी है।
और दूसरी चीज, आज के जमाने में जहाँ सच और झूठ का फर्क करना इतना मुश्किल हो गया है, आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग, किसी भी जानकारी को यूं ही मान ना लेना, उसे परखना, सवाल पूछना, ये स्किल अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है।
बिल्कुल सही कहा, और इसके साथ ही मुझे लगता है लगातार सीखते रहने की मानसिकता अपनानी होगी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। दुनिया बदल रही है बहुत तेजी से, तो हमें भी बदलना होगा। हमें शायद ऐसे स्किल्स सीखने होंगे जिन पर AI आसानी से हावी ना हो सकें, जैसे क्रिएटिविटी है, जटिल समस्याओं को सुलझाना है, लोगों को समझना और उनके साथ मिलकर काम करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस, कोलैबोरेशन। AI को दुश्मन समझने के बजाय उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखना होगा, जो हमारे काम को बेहतर बनाए, ना कि हमारी जगह ले ले।
ये हुई व्यक्तिगत बात, अब सामाजिक स्तर पर क्या?
सामाजिक स्तर पर मुझे लगता है कि ये जो बहस है टेक्नोलॉजी को कैसे कंट्रोल करें, उसकी दिशा क्या हो, ये सिर्फ बंद कमरों में कुछ एक्सपर्ट्स के बीच नहीं होनी चाहिए। इस पर एक खुली सार्वजनिक बहस की जरूरत है। हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए।
और हम कैसे शामिल हो सकते हैं?
हम ऐसी कंपनियों और ऐसी रिसर्च को सपोर्ट कर सकते हैं जो जिम्मेदारी से इनोवेशन कर रही हों, जो सेफ्टी और एथिक्स को प्राथमिकता देती हों, और जो अपने काम में पारदर्शी हों, बताएं कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों। हमें सरकारों से भी जवाबदेही मांगनी चाहिए कि भाई आप इन नई तकनीकों को रेगुलेट करने के लिए क्या ठोस कदम उठा रहे हैं।
खासकर भारत जैसे देश में जहां डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से अपनाई जा रही है, आधार से लेकर UPI तक और अब खेती से लेकर शिक्षा तक में AI का इस्तेमाल शुरू हो रहा है, ये चर्चाएं और भी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। हमें ये सवाल पूछने होंगे, क्या ये तकनीकें समाज के हर वर्ग के लिए फायदेमंद हैं, या इनका फायदा सिर्फ कुछ लोगों को मिल रहा है? क्या ये हमारे सामाजिक मूल्यों के साथ मेल खाती हैं? कहीं हम विकास की दौड़ में कुछ जरूरी चीजें पीछे तो नहीं छोड़ रहे? हमें एक समावेशी और नैतिक तकनीकी भविष्य के बारे में सोचना होगा और उसके लिए आवाज उठानी होगी।
इस पूरी गहरी बातचीत के बाद मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा कह सकते हैं चौंकाने वाली या सोचने पर मजबूर करने वाली रही, वो ये है कि कैसे लेखक मानते हैं कि यह तकनीकी लहर लगभग एक प्राकृतिक शक्ति की तरह है, जैसे कोई तूफान हो या बाढ़ जिसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन इसके बावजूद वो पूरी तरह निराशावादी नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि हमारे पास इसे दिशा देने का, इसे मोड़ने का विकल्प और ताकत अभी भी है। ये एक अजीब सा विरोधाभास है ना, एक तरफ नियति जैसी लगने वाली ताकत, दूसरी तरफ इंसान की इच्छा शक्ति, चुनने की आज़ादी। ये थोड़ा डरावना है, पर इसमें एक उम्मीद भी छिपी है कि शायद अभी भी सब कुछ हमारे हाथ से निकला नहीं है।
हाँ, और मेरे लिए वो संकीर्ण पथ वाली जो अवधारणा है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहे। ये आइडिया कि हमें न तो टेक्नोलॉजी से डरकर भागना है, न ही आंख मूंदकर उसे अपना लेना है, बल्कि एक बहुत ही महीन संतुलन साधते हुए, लगातार सीखते हुए, अडैप्ट करते हुए, एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ना है। ये रास्ता आसान नहीं होगा, इसमें बहुत गलतियां भी होंगी, बहुत बहसें होंगी।
यकीनन।
लेकिन साथ ही ये एहसास कि हमारे आज के छोटे छोटे फैसले भी, हम क्या चुनते हैं क्या नहीं चुनते हैं, ये सब मिलकर पूरी मानव प्रजाति के भविष्य पर असर डाल सकते हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। ये हमें सिर्फ अपने बारे में या अपने आसपास के लोगों के बारे में नहीं, बल्कि आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये जिम्मेदारी भारी जरूर है, पर शायद यही हमें सही काम करने के लिए प्रेरित भी कर सकती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकृता फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।